सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः
आवश्यकता इच्छाओं के चिंतन की आवश्यकता है। ये परस्पर एक दूसरे की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। मतलब एक प्रश्न उठता है तो दूसरा जवाब होता है, तो यही फिर प्रश्न बनता है, तो उसके बाद फिर उसका कोई उत्तर हमें प्राप्त हो जाता है। इस तरह यहां पर अनित्यादि जो 12 अनुपेक्षाएं हैं उनका यहां पर वर्णन किया जा रहा है। कल मनीश्री ने अनित्य अनुपेक्षा के विषय में हम सबको समझाया, लेकिन बड़ी उलझन में डाल दिया है उन्होंने हमें। उलझन कौन सी है? अब हम सब भयभीत हो गए हैं, हम डर गए हैं। किससे डर गए? कल महाराज जी ने कहा था कि यहां कुछ भी नित्य नहीं है, सब अनित्य है। ये जो जीवन मिला है ये भी हमारा अनित्य है। एक दिन हमें मरना पड़ेगा, हम मर जाएंगे, ये सब छूट जाएगा, धन वैभव परिवार संसार दुख सुख सब छूट जाएगा। अब हम सब भयभीत हैं। इस बात से भयभीत हैं, किस बात से? कि ये सब छूट रहा है, इस सबका विनाश होने वाला, इससे हमें भय लग रहा है। और अब हम क्या करते हैं? जब भयभीत है तो हमारा एक कदम आगे बढ़ता है भय से मुक्त होने के लिए। इसलिए दूसरी अनुपेक्षा आ जाती है, असरण अनुपेक्षा। अब हम भयभीत हैं इसलिए हम शरण खोजना चाहते हैं। हमें मृत्यु से भय है, हमें धन के विनाश का भय है। हम मालूम है कितने तरह के संसार के भय हमारे भीतर पैदा हो गए हैं इस बात से, क्योंकि हमने जान लिया है कि सब अनित्य है, इसलिए भय पैदा हो गया है। अब हम उनकी सुरक्षा के लिए कुछ उपाय खोज रहे हैं, शरण चाहते हैं। यहां शरण को पाने के लिए अब हमने एक कदम अपना आगे बढ़ाया है। आचार्य ने इसका बहुत अच्छा चित्रण किया है एक रूपक के माध्यम से, कि तुम जिससे भागना चाहते हो, जिसे तुम भयभीत हो, वहां तुम रास्ता ढूंढना चाह रहे हो सुरक्षा का, इसका बहुत अच्छा चित्रण है। अग्रे याद है कर अभी कटाया पांडे को जाल मिला प्रत्ये वही बहुत निगरान दान को सार लिया एम गर्वा बल सगवना बाल का युद्ध सारा संता वस्ता बदत हरण की करे ही कौन में। उन्होंने चित्रण किया है कि एक हिरण का परिवार है, हिरण है, हिरणी है, उसके बच्चे हैं, और ये पूरा परिवार जंगल के बीच है। कहीं जा रहा है रास्ते से, तो आगे दौड़ता समय आना था कि देखता क्या है कि आगे आना कर भी था।
सामने देखा कि एक शिकारी कंधे के ऊपर तीर कमान लिए हुए चला आ रहा है। जैसे ही सामने शिकारी को देखा तो वो पूरा हिरण का परिवार वापस लौटा और दूसरी दिशा की तरफ भागा, समीप दूसरी साइड की तरफ चला, पार्श्व को पार्श्व भाग की तरफ भागा। तो क्या देखता है? जाल माला। वहां पर जानवरों को फंसाने के लिए जाल बिछाया गया है कि यहां से जो भी जानवर निकलेंगे वो इसमें फंस जाएंगे। तो दूर से जैसे ही उन्होंने देखा कि यहां जाल बिछाया हुआ है, तो दुर्योधन के पीछे की तरफ भागे। पीछे की तरफ चले तो कहते प्रस्तर वही दहा के मुकराम। पीछे जाकर के दौड़ करके देखा कि यहां पे आग लग गई है, जंगल बहुत भारी आग लग चुकी है और आग के कारण सारे जानवर भाग रहे हैं, कुछ जल रहे हैं। तो यहां पे ही वापस लौटे और वापस लौट करके अब बाएं को बाएं तरफ चले सहारे मेरा। तो क्या देखता है? बाएं तरफ जब चला तो वहां पर शिकारी कुत्ते दौड़ते हुए चले आ रहे थे। अब वो पूरा हिरण का परिवार वही किन कर्तव्य विहीन होकर के खड़ा है। हिरण कह रहा है कि चलो भागो यहां से, यहां क्या कर रहे हो खड़े होकर के? गई, यहाँ आग लगी हुई है, यहाँ शिकारी आ रहा है, यहाँ पर जाल बिछा हुआ है, यहाँ के शिकारी कुत्ते आ रहे हैं, और यहाँ खड़े यहाँ से चलो, हरिणी से हरण कहता कि यहाँ से चलो भागो, तो हरिणी क्या जवाब देती है कि चिंता अवस्था बदत हिरणम किम करो की ज्ञानी,
चिंता से आगे से होकर के कहता है कि मैं क्या करूं,
मैं गर्भ दलित गगन बालकों युद्ध मैं गर्भवती हूं और जो मेरे बच्चे हैं वे दोनों पैरों से जकड़ गए हैं, उन्हें पैर पकड़ लिए जाने के कारण इसलिए मैं चलने में असमर्थ हूं, ऐसे इस संसार के बीच में हम भयभीत होकर के शरण की खोज में जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमें शरण मिलेगी, लेकिन आचार्य भगवंत कहते हैं हमें कहा शरण नास्ती तुम्हें शरण संसार में कहीं पर भी कोई शरण नहीं है, सब अशरण, हमें अपने जीवन की सुरक्षा के लिए, अपने धन की सुरक्षा के लिए, परिवार की सुरक्षा के लिए हमें यंत्र मंत्र तंत्र बड़े बड़े महल और अंडरग्राउंड चलकर ऐसे सब कुछ बना लिए, बड़ी बड़ी सेनाएं सुरक्षा के लिए रख ली, बड़े बड़े पहलवान रख लीजिए कि इन सबसे हम अपने जीवन की सुरक्षा करेंगे, लेकिन अंत समय तक वो काम नहीं आते, जब मृत्यु सामने
आती है तो सब वहीं खड़ा रह जाता है, वो जाने माना चला जाता है, मरण से कोई बचा नहीं पाया। भगवान की स्तुति करते वक्त कहा कि अन्यथा शरण नास्ति तमेव शरणम, हे भगवान मैंने संसार में सब जगह एक एक करके देख लिया है, कहीं पर भी मुझे शरण नहीं मिला, इसलिए तमेव शरणम, हे भगवान अब आप ही मेरे लिए शरण है, इसलिए क्या करो तस्मात कारण भावों में रक्ष रक्ष जिनेश, हे भगवान इसलिए करुणा करके आप हमारी रक्षा कीजिए, हम रक्षा के भाव से भगवान के चरणों के सानिध्य में पहुंचे हैं, उनके चरणों के सानिध्य की शरण लेने इसलिए कि हम अपनी सुरक्षा करें। अब यहां पर शरण वाली बात जो आई है, सुरक्षा की बात आई है, रक्षा करनी है, किससे करनी है रक्षा, रक्षा मृत्यु से करनी है, रक्षा जन्म से करनी है, रक्षा भय से करनी है, इन सबसे हम अपने आप की रक्षा करना चाहते हैं, उस सुरक्षा के लिए यहां से आगे बढ़ रहे हैं। एक व्यापारी था और विदेश यात्रा के लिए जा रहा था धन कमाने के लिए, तो उसकी पत्नी ने कहा कि देखो तुम विदेश जा रहे हो लेकिन विश्वास नहीं है, इतने दिनों में ऐसा ना हो कि तुम बदल जाओ, इसलिए मेरी एक बात मानो, मैं तुम्हें एक भगवान की मूर्ति देती हूं और तुम प्रतिदिन इसकी पूजन करना, तो मुझे विश्वास रहेगा कि तुम बदलोगे नहीं। वो व्यापारी उस मूर्ति को लेकर के चला गया और विदेश जाकर के व्यापार करने लगा, लेकिन उसके प्रतिदिन का कर्तव्य था कि मूर्ति को रखता था, उसकी पूजा करता था, उसे मोदक आदि चढ़ाता था, उसने लड्डू चढ़ाया तो एक दिन क्या हुआ, एक चूहा आ गया, तो जो लड्डू चढ़ाया गया था वो लड्डू उठा के खा के चला गया, तो वो देख रहा था उसने कहा जिनके लिए हमने अपना बड़ा माना कि हमारे बहुत बड़े हमारे ऊपर हैं, ये हमारा कुछ सहयोग करेंगे, ये अपने लड्डू की सुरक्षा नहीं करता तो मेरी क्या सुरक्षा करेंगे, उसने कहा तो उनसे अच्छा तो वो चूहा है, उनकी जाने बलवान है, तो उसने चूहे को पकड़ लिया और फिर विनती हुई कि पूजा करने लगा, तो एक दिन पूजा कर रहा था कि अचानक एक बिल्ली निकल पड़ी वहां से, तो बिल्ली को देखा और चूहा सर पर भागा, तो उसे जवाब तो अरे ये क्या तमाचा है, चूहा भी इतना मारी तो इससे अच्छी तो बिल्ली है, तो उसने क्रम बन गया, उसने बिल्ली की पूजा करना प्रारंभ कर दी, लेकिन अचानक कुत्ता आ गया तो बिल्ली भी डर के मारे भाग गई, तो कुत्ता ज्यादा बलवान हो गया क्योंकि कुत्ता ज्यादा शक्तिशाली, बिल्ली डर गई, कुत्ता की पूजा करता रहा और एक दिन वापस लौटा अपने घर, घर आया तो उसकी पत्नी से, अगर उसने अपना समाचार सुना, पत्नी ने कहा वो मूर्ति कहा, बोले मूर्ति होती तो फेंक दी, इसमें कुछ भी नहीं है, कि अभी अपनी सुरक्षा नहीं कर सकती तो वो हमारी क्या करेंगे। बोले कुत्ता बहुत अच्छा है, इससे बिल्ली तक डरती है, इसलिए इसकी पूजा करता। तो अचानक क्या हो गया, वो पत्नी क्या बोले बेचारी डरती नहीं थोड़ी सी, तो पत्नी एकदम रोटी बना रही थी और थोड़ा पानी लाने के लिए दूसरे कमरे में, इतने में कुत्ता भीतर घुस गया तो उसने भोजन जूठा कर दिया। तो पत्नी आया, उसने देखा उसने भोजन जूठा कर दिया, उसने एक लाठी उठाई वो दो जमा में उसके लिए, तो कुत्ता भोजन करता होगा बाहर भागा। तो शादी में देखा कि अरे आवाज क्यों कर रहे हैं, तो मालूम चला कि उसकी पत्नी ने दो डंडे उसको लगा दिए। तो उसने कहा अरे इसकी अच्छी तो हमारी पत्नी है, बुझाने डरी है, बुझाने सुरक्षा देगी हमारे लिए। तो पत्नी की पूजा करने लगा, लेकिन एक दिन क्या होगा, भोजन कर रहा था तो भोजन में नमक बहुत कम था। तो उसने पूछा, उसने कहा कि नमक क्यों नहीं डाला, तो अब जिसकी पूजा की है वो ऐसे थोड़ी बोलता, कह रही नहीं डाला तो नहीं डालू खाना था। तो उसे गुस्सा आएगा और गुस्सा आएगा, तो उसने दो चारे लगा दी अपनी स्त्री पर। तो उसे ख्याल आ रही उसके बड़ा तो मैं ही हूं, मैं सबसे बड़ा हूं, और वास्तव में सबसे बड़ा मैं ही हूं, हम सबसे बड़े हैं और कोई दूसरा हमसे बड़ा नहीं। हम दुनिया में सब जगह इस दृष्टि से ही निकलते हैं कि हमसे कोई बड़ा मिलेगा, उसकी हमें सुरक्षा मिलेगी, कुछ हमें शरण मिलेगी। लेकिन खूब ढूंढते रहो, कहीं कोई शरण हमें प्राप्त नहीं होती है। जिसकी हम शरण पाना चाहते हैं वास्तव में वहां तक हम नहीं जाते हैं। दूसरी बात कि हम सुरक्षा चाहते हैं, लेकिन सुरक्षा किसकी चाहेंगे हैं, ये भी तो प्रश्न उठना चाहेंगे। हम शरण चाहते हैं किसके लिए चाहते हैं, सुरक्षा देव की चाहिए या देही की चाहिए, सुरक्षा शरीर की चाहिए या आत्मा की, किसकी सुरक्षा चाह रहे हैं हम, किसके लिए शरण खोज रहे हैं। मृत्यु से बचने के लिए, शरीर की सुरक्षा के लिए यदि तुम परमात्मा की चरणों की शरण में भी जा रहे हो तो ध्यान रखना ये आपकी मिथ्या धारणा है। तीर्थंकर भगवान भी इस धरती पर उतरते आए हैं तो वो भी मृत्यु से किसी को बचा नहीं सकते। नारायण क्या ही था उनके पास में, सब कुछ था, इतने व्यवहार था कि पूरे जीवन में उनकी ख्याति फैलती रही, उनकी शक्ति सामर्थ्य तो व्यवहार सब कुछ था, इतना पुण्य था। लेकिन एक समय जब आया तो जंगल में एक लोटे पानी के लिए पास रहे थे वो नारायण, सारा पुण्य चला गया, सारा वैभव चला गया, और वो जरत कुमार ने एक छोटा सा बाण मार दिया तो इतने से मृत्यु हो गई। जिन नारायण ने बड़े बड़े स्थल उठा करके अकेले ही पूरा युद्ध कर लिया, वो एक छोटे से तीर के कारण चले गए। मतलब जब मृत्यु आती है तो कोई बचा नहीं सकता। भगवान की दिव्यवाणी में ऐसा निकला था कि आपकी मृत्यु ऐसी होगी तो उसकी बचाने की पूरी कोशिश की गई, और जिसके द्वारा होना था उसने तो घर छोड़ करके जंगल पर बात स्वीकार कर लिया। लेकिन भगवान ने जो कह दिया कोई झूठा नहीं होता, भगवान का एक वचन भी मिथ्या नहीं होता, और उसी व्यक्ति के हाथ से जो उनका भाई था उसके हाथ से उनकी मृत्यु हो गई। सारे वैभव सारी शक्तियां सब यहीं पड़ी रह जाती, जब मृत्यु आती है तो कोई किसी का साथ नहीं देता है। तो हम सुरक्षा किसकी चाहते हैं, शरीर की सुरक्षा चाहते हैं आत्मा की। शरीर की सुरक्षा के लिए यदि शरण खोज रहे हो तो गलत है, शरीर की सुरक्षा के लिए कहीं कोई शरण हमें प्राप्त नहीं होगी। हमें यदि कोई दूसरी शरण चाहिए है तो उसके लिए शरण है, आत्मा की सुरक्षा के लिए शरण है। शरीर का स्वभाव है कि वो गलता है, बनता है, बिगड़ता है, उसका स्वभाव है। मेरा जब जन्म होगा मरण होगा, इस स्वभाव को कोई मोह नहीं सकता है, वो तो यदि जन्म हो जाए तो मरण होगा ही, इसे कोई नहीं देख सकता। इसलिए इसकी सुरक्षा की चिंता ज्यादा मत करो। और दूसरी जो हमारे रास्ते में जो हमारा अस्तित्व है, जो शाश्वत है, जो मेरा स्वभाव है, ऐसा आत्मतत्व,
उसकी सुरक्षा के विषय में हम सोचना चाहेंगे कि आत्मा की सुरक्षा कहां से की जाए, उसके लिए क्या साधन है,
आत्मा की सुरक्षा कैसे करनी है, आत्मा को व्यवहारिक परिणामों से बचाना है, आत्मा को मिथ्या परिणामों से बचाना है, मिथ्या सिद्धांत मिथ्या ज्ञान मिथ्या आचरण से बचाना है, हमारी जितनी भी विपरीतताएं हैं ये हमारे लिए नरक नरक की यात्राएं कराती हैं, हमें संसार के जितने भी दुख हैं सब प्राप्त कराते हैं, इसलिए हमारा आत्मा असुरक्षित हो जाता है। हम अपनी आत्मा को दुखों से बचाने के लिए हम सुरक्षा चाहते हैं, तब पर हमें इन प्रवृत्तियों से बचने के लिए कोई शरण खोजना पड़ेगी। पंडित जयचंद जी की शायद 12 भावना है ऐसा शायद उनकी है, उसमें एक दोहा लिखा है उन्होंने, शुद्धातम और परम गुरु जगमन शरणा दो मूल उदय जी की वृथा आम कल्पना हो। शरण के विषय में यदि मूल का उदय आ जाता है तो व्यक्ति के लिए मालूम किस किस तरह की और दूसरी कल्पना होने लगती है, तो ये शरण मिलेगा वो शरण मिलेगा, वास्तव में वो शरण नहीं है, शरण तो दो ही हैं, शुद्धातम और परम गुरु। पंच परमेश्वरी जो हमारे परम गुरु माने हैं वो हमारे लिए शरण भूत हैं, वो पहले हैं और दूसरा हमारा आत्मा। प्राथमिक अवस्था में यदि कोई शरण होगा तो पंच परमेश्वरी हमें शरण होंगे, हमारी आत्मा को दुर्गति से बचाने में साधन भूत यदि कोई है तो हमारे पंच परमेश्वरी हैं, और दूसरा भी कोई है तो मेरा आत्मा है। कैसा आत्मा? शुद्धातम, जो शुद्ध स्वरूपी मेरा आत्मा है वो मेरे लिए सुरक्षा दे सकता है और कोई दूसरा सुरक्षा नहीं दे सकता है। बारह संवेखा में आचार्य कुमकुम महाराज ने एक गाथा में लिखा है, उसका भाव है कि जन्म जरा मरण और रोगों से भयभीत है, उस भय से हम रक्षा चाहते हैं अपनी आत्मा की, तो आत्मा की रक्षा के लिए यदि कोई है तो हमारा आत्मा ही शरण है। लेकिन वो कैसा आत्मा है? वो कहते हैं कि बंद उदय सत्य रूपी कर्मों से जो मुक्त उनसे जो रहित होने वाला है या उनसे शुद्ध आत्मा जो प्राप्त हो गया है, ऐसा शुद्ध आत्मा हमारे लिए शरण है। तो शुद्ध आत्मा कहते हैं पंच परमेश्वरी भी आएंगे, आएंगे शुद्ध भगवान शुद्ध आत्मा है, अनंत भगवान भी अपेक्षा से शुद्ध आत्मा है, आचार्य उपाध्याय साधु भी किसी अपेक्षा से शुद्ध आत्मा है, इसलिए वो पंच परमेश्वरी भी है शुद्ध आत्मा भी, तो वो दोनों शरण भी है। और यदि हमारी आत्मा शुद्ध की तरफ बढ़ रही है तो हमारी आत्मा भी हमें शरण रूप है। ऐसे इस संसार में इस अशरण भावना का हम चिंतन करते हैं कि वास्तव में संसार में कोई किसी के लिए इन इन चीजों से सुरक्षा देने वाला नहीं है, ऐसे बार बार जो हमारी धारणा होती, बार बार जो हमारा ऐसा चिंतन होता है, वो चिंतन हमारे लिए सुख और शांति को देने वाला होता है। हमारे परिवार में, हमारे नगर में, हमारे मित्र के यहां जब कभी कोई इस तरह की अनर्थकारी घटनाएं घट जाती हैं, किसी का मरण हो जाता है, किसी के यहां आग लग जाती है, किसी का धंधा क्षय हो जाता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो हम और वो परिवार और सुनने वाले सब दुख से पीड़ित हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उसके साथ हमारा ममत्व परिणाम जुड़ा हुआ है। और यदि हमें याद हो जाए कि कौन किसको बचाता, समय आने पर सबको ही तो मरना पड़ता है, समय आने पर जब कर्म का उदय होता है तो सबको ही तो भोगना पड़ता है, कोई दूसरा कर्म का भी भोगने के लिए नहीं आता है, तो मैं कौन होता हूं उसको बचाने वाला, मैं कौन होता हूं उसको सुरक्षा देने वाला, या मेरे लिए कौन दूसरा हो सकता है सुरक्षा देने वाला, हमें अपना क्या होगा स्वयं भोगना पड़ेगा। बाहर बाहरी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है, अपनी आत्मा की सुरक्षा के लिए हमारे आत्मा के ही परिणाम हमें सुरक्षित कर सकते हैं। कार्तिकीय अनुपेक्षा में आचार्य कार्तिकेय स्वामी ने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को परम श्रद्धा से जो अपने जीवन में उतारता है उसके लिए वास्तव में वही शरण है, क्योंकि आत्मा को संसार से बचाने वाला यदि कोई है तो वो सम्यक दर्शन, ज्ञान और आचरण है जो इस आत्मा को संसार के दुखों से बचाते हैं, मुक्ति तक ले आते हैं। जिस मुक्ति की, जिस मोक्ष की चर्चा वो पंडित साहब कर रहे थे, उस मोक्ष तक ले जाने के लिए यदि कोई है तो वो हमारा रत्नत्र है, वो हमारी समीचीन श्रद्धा, समीचीन ज्ञान और समीचीन आचरण है। हमें उसकी शरण लेना है, उसकी शरण जाना है, उसमें चले जाएंगे तो वास्तव में हम मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन हमें कभी ऐसा एहसास नहीं होता है कि वास्तव में वहां हम ये भ्रम पड़े रहते कि यहां शरण मिलेगा, यहां शरण मिलेगा, लेकिन कहीं कोई शरण हमें प्राप्त नहीं होता है। आपका समय हो चुका है और इसके बाद फिर आगे फिर चलेगा, कल यही क्रम प्रतिदिन चलता रहेगा। यदि विधिवत आप समय से आएंगे और 8:30 बजे शुरू होगा तो आपके लिए ये आध घंटा अवश्य दिया जाएगा, लेकिन इसमें से जितना कम हो जाएगा वो आपके लिए उतना कम दिया जाएगा। इसलिए आज का आपका समय हो गया, मैं यही विराम लेता हूं कि हम सबके जीवन में वैराग्य, समत्व और सुखी उपलब्धि के लिए हम इन 12 संपेक्षाओं का निश्चित चिंतन करेंगे, जिससे कि हमें बहुत बड़ा लाभ होगा जो आज तक न हुआ है, न पहले हुआ था, भविष्य में ऐसा लाभ हमें हो सकता है। इसी भावना से आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज जी की
से कोई जब चेहरा नहीं दिखा तो सामने जो वट वट जो संसार विशेषित होता तीर्थंकर के त्यागे काहे फिर से साधन करते संयम से अनुरागे। संसार का चित्रण मनुष्य के लिए संसार से भीति पैदा करता है। तत्कार सूत्र के सातवें अध्याय में लिखा है जगत काय स्वभाव व संवेक वैराग्यार्थम, जगत का संसार का और इस शरीर के स्वभाव का चिंतन करने से वैराग्य की उपलब्धि होती है। ये अनुप्रेक्षाएं मनुष्य को यथार्थता के धरातल पर जीना सिखाती है। कोरी कल्पनाओं से मनुष्य के लिए सुख और शांति की उपलब्धि नहीं होती है, यह बोध भी उन्हें अनुप्रेक्षाओं के माध्यम से मिलता है। भर्तृहरि ने वैराग्य शतक में बड़ा मार्मिक श्लोक लिखा है भोगे रोध भयम कुले च्युति भयम वित्ते मृतलाद भयम शास्त्रे वादी भयम गुणे भयम काये कृतांतोदय भयम सर्वं वस्तु भयान गतम भूमि मृणाम वैराग्य भय। संसार में भोग में रोग का भय होता है, प्रतिष्ठा में निंदा का भय होता है, जो प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली है वो कहीं अपयस में न बदल जाए इसका भय हुआ करता है। धन में असुरक्षा का भय है, जिन लोगों ने धन को एकत्रित किया है वो निरंतर भयभीत है, कहीं किसी को इनकम टैक्स का भय रहता है, कहीं किसी को यह रहता है कि कोई जीव न काट ले, चोरी न हो जाए, कोई उठाने ले जाए। अपने सगे पुत्र पर भी विश्वास नहीं हो पाता है कि तिजोरों की चाबियां कैसे उसको सौंप दे, कहीं वो मनमाना खर्च न कर दे। सम्मान में अपमान का भय हुआ करता है, सत्ता जिनके पास है उनके लिए विपक्षियों का भय होता है, शत्रुओं का भय होता है, कहीं एकजुट होकर के सरकार न गिरा दे। और सौंदर्य में बुढ़ापे का भय होता है, वृद्धावस्था न आ जाए। शास्त्र ज्ञान में वादियों का भय होता है, कोई बड़ा वाद विवाद करने के लिए ना आ जाए और हमारे ज्ञान की कली खुल जाए। गुणों में दुष्टों का भय होता है, क्योंकि दुष्टजन गुणों से ईर्ष्या करने लगते हैं, तरह तरह के षड्यंत्र रचने लगते हैं। शरीर में मृत्यु का भय होता है, मनुष्य संसार में भगवान है उसके पास भय के अतिरिक्त कोई दूसरा साधन नहीं है, लेकिन वैराग्य जो है वह भय से निर्भय की ओर ले जाता है। संसार में सब तरफ दुख के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। एक बार विश्व विजय की अभिलाषा से निकला हुआ सम्राट सिकंदर जब एक समुद्र के किनारे टहल रहा था तो उसने पाया कि एक स्थान पर खोपड़ी पड़ी हुई है और जो समुद्र की अंतहीन लहरें हैं वे अपने आवेश में बहुत सारे मणि मुक्ताओं के ढेर को बटोर करके लाती हैं और उस खोपड़ी के अंदर डालती जाती है, लेकिन वो खोपड़ी हमेशा खाली की खाली ही रहती है। तब फिर वहां पर गुजरते हुए एक मुनि महाराज से उसने पूछा कि इसका रहस्य क्या है, इतनी असंख्य लड़ने नातियों की आती है, इस खोपड़ी को भरना चाहते हैं लेकिन ये खोपड़ी खाने की खाने क्यों रहते हैं। तो मुनि महाराज ने कहा कि सिकंदर ये तृष्णा की खोपड़ी है, मनुष्य की खोपड़ी है, ये कभी भर नहीं सकती। तृष्णा बस धनवान, तृष्णा के कारण धनवान दुखी रहता है और निर्धन धन के अभाव में दुखी रहता है। कोई व्यक्ति अपनी नौकरी करते हैं सेठ के यहां पर, उसका किसी वस्तु से लगाव नहीं होता है, क्योंकि वो मान लेता है कि ये वस्तु सेठ की है, मैं तो इसका नौकर मात्र, मुझे सिर्फ इतना ही काम है कि इस वस्तु की सुरक्षा करनी है। लेकिन एक दिन जब कहा गया कि ये बहुत सुखी है तो सेठ ने कहा कि इसके सुखी होने का रहस्य ही बतला देता हूं और उसके घर में 99 रुपये डाल दिए। 99 रुपये जैसे उसने दिन सुबह वो कहने लगा कि अगर 100 डाल देता कोई तो कितनी बड़ी बात थी, अब 99 को 100 करने के चक्कर में वो दिन रात घूमने लगा, शरीर अस्वस्थ हो गया, मन अस्वस्थ हो गया, उसका दिमाग निरंतर 100 करने के लिए घूमने लगा। 100 को कभी सिकंदर भी नहीं कर पाया था, ये व्यक्ति क्या कर सकता। वह इसलिए दुखी है कि 100 नहीं हो पा रहे हैं और दूसरा व्यक्ति इसलिए दुखी है कि जो धन उसने पा लिया है उस धन की सुरक्षा कैसे की जाए। इसलिए इस संसार में वही व्यक्ति सुखी हो सकता है जिसके लिए मन में कोई आशाएं नहीं है,
जिसके लिए संतोष है, जिसका जीवन यह मान करके चल रहे हैं कि एक दिन फिर है इंद्रधनुष की तरह संसार की विषय वासनाएं सामग्रियां सब कुछ नष्ट होने वाले हैं। ये जीवन भी सूरज चंद्रमा की तरह निकल करके उदय रास्ते की तरह एक दिन मृत्यु के क्रोध में समा जाने वाला है और इस जगत में हिरण के समान भरे हुए व्यक्ति के लिए कोई भी बताने वाला नहीं है। इसलिए वह भगवान की शरण में पहुंच जाता है, अपने आप की खोज कर लेता है। वह सोचता है कि अब इस संसार को देखा जाए, मैंने अभी विषय वासनाओं से अनित्य का देखी है, मैंने देखा है कि इस संसार में कोई शरणभूत नहीं है। तब फिर और अच्छे से देखा जाए कि संसार है क्या। आप लोग भी अच्छी तरह से देख चुके होंगे कि संसार क्या है। बहुत पहले 1986 या 88 के समय किसी ने पूछा था कि महाराज इतने बचपन में देखा लाने का भाव कैसे जागृत हो गया, तो ये भी उत्तर मुझे सूझा था उस समय कि आप लोगों के चेहरे देखकर। ये भी बताने की आवश्यकता नहीं है कि संसार में क्या है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अच्छी तरह से संसार को जीता है, देखता है, उसके बाद भी उसी एक गणपति की तरह मधुमक्खी का एक विषय रूपी जो ये मधुर बूंद है, ये स्वाद है, उसका लेने के लिए वह अपने जीवन के बहुमूल्य क्षणों को खो देता है और जीवन को अंततः क्लेश और संक्लेश में डालता हुआ एक दिन नरक विरोध आदि पर्यायों को भेजने लगता है। मनुष्य जन्म हमारे लिए मिला है, नरक गति को जब देखे तो हमने कहा वहां पर बहुत बार इस शरीर को खंड खंड में विभाजित कर दिया गया, तब उस समय एक ही संकल्प हमारे दिमाग में रहा, मन में रहा कि एक बार अगर मनुष्य जीवन मिलेगा तो निश्चित रूप से मैं कोई मुक्ति का उपाय सोचूंगा, बार बार इस संसार में न भटकना पड़े ऐसा कोई उपाय करूंगा। लेकिन क्या करें, यहाँ की चकाचौंध, यहाँ वासनाओं की दौड़, प्रतिष्ठा और प्रभुता के पाने की होड़ मनुष्य के लिए अपने यथार्थ से वंचित करती है। वह अपने यथार्थ में कभी पहुंच सकता है जब संसार में रहता है या संसार से ऊपर रहा है। दो तरह के जीव संसार में पाए जाते हैं,
एक तो देह जो संसार में रहते हैं और दूसरे देह होते हैं जो संसार पर रहते हैं। संसार पर रहने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है, संसार में डूबे रहने वालों की संख्या बहुत अधिक है, और जो संसार में डूबे रहते हैं वो स्पष्टतः नीचे की ओर जाते हैं, जो संसार के पार ऊपर रहते हैं उनके लिए निश्चित रूप से ऊर्ध गति मिलती है। दोनों रास्ते हमारे पास है, हम संसार में रहे लेकिन संसार से जागृत होकर के रहे, संसार से भागे रहे, क्योंकि भागने से संसार पीछे छोड़ने वाला नहीं है। जितने आप सोचेंगे कि हम इस बस्ती से भागते चले गए उतनी उतनी भी आपके पीछे दौड़ते चले जाएंगे। भाग की फिरती थी दिन में जब तलब करते थे हम, छोड़ दिए बच्चे हमने बेकरार होने के। जितने आप पैसे के पीछे भागेंगे उतना पैसा आपके दूर भागते चला जाएगा, जितना आप संपत्ति से भागेंगे उतनी संपत्ति आपके विलुप्त होती चली जाएगी, और जिस क्षण तीर्थन का परमात्मा भगवान सारी संपत्ति को सारी विभूति को छोड़ देते हैं उसी समय तीनों लोगों की विभूति समय शरण में स्थित होने पर उनके उर्द गिर्द भटकने लगती है, शरण पाने की कोशिश करती है। लेकिन हमारे दूत राज ही दंड पति में विराजमान होकर के ही चार अंग सवन के ऊपर ही विराजमान रहते हैं, क्योंकि वो बहिरंग लक्ष्मी के भक्त नहीं होते हैं, केवल ज्ञान जी की लक्ष्मी जो शाश्वत होती है जिसका अंत नहीं होता है, ऐसी लक्ष्मी के भक्त बन जाते हैं। संसार में सब भूत है, स्वतंत्र है, यह जो मान लेता है वह व्यक्ति संसार में रहता हुआ भी संसार को एक साक्षी भाव से जीने की कोशिश में लग जाता है। एक व्यक्ति ने सुना कि भरत चक्रवर्ती घर में ही वैराग्य है, भला ये कैसे हो सकता है कि कोई चक्रवर्ती
6000 रैलियों के साथ विषय भेद करे और उसके बाद भी विरक्त रहे, ये तो असंभव। इतने 14 निधि नौ रत्न आदि की विभूति चाले, एक झाड़ी घोड़ा भी कोई खरीद लेता है, किसी के पास कोई अच्छी ओली या चौ का तार होती है तो वो देखता रहता है कि कोई बच्चा उस पर स्पर्श तो नहीं करता। अगर इसमें खरोच आ जाती है तो दिल के अंदर भी खरोच आ जाती है। लेकिन छोटी छोटी सी विभूति में दाखिल होने वाला व्यक्ति जब उसने सोचा कि चक्रवर्ती सम्राट भरत इतने बड़े महल के अंदर ही निर्लेप है, निष्क्रिय है, उसके लिए किसी बात की आकांक्षा नहीं है, वह हमेशा अपने जीवन में साथ से सुख को पाने की कोशिश में लगा रहता है, तो उसने सोचा कि परीक्षा तो की जाए कि किस तरह से विरक्त है। उस व्यक्ति ने सम्राट चक्रवर्ती से कहा कि ये बात आपके गले नहीं पड़ती है कि आप संसार में रहते हुए भी संसार से विरक्त है। भरत चक्रवर्ती ने कहा कि आप परीक्षा करके देख सकते हैं, परीक्षा में मुझे क्या करना होगा। तो चक्रवर्ती ने कहा कि ये कोई तेल का कटोरा तुम्हें देता है, 6000 रानियां संगारित होकर के एक से बढ़कर के एक सुंदरी सामने खड़े रहेंगे, सारे हीरे जवाहरात के अक्षर भंडार जो है वो सब खोल दिए जाएंगे और जो मेरी सेनाएं हैं वो सब खड़े कर दिए जाएंगे, हाथी घोड़े 18 करोड़ जितने भी जो है सब यहाँ पर उपस्थित कर दिए गए, उसके बाद भी तुम देखते जाना, सारा जगह देख लेना मेरा, लेकिन सर कोच ये है कि जो तेल का कटोरा तुम्हारे लिए दिया जा रहा है उसमें से अगर एक बूंद भी गिर जाएगी तो जो पीछे एक सैनिक चल रहा है तलवार लेकर के वो तुम्हारा सर काट दे। वह व्यक्ति स्थिर से स्थिर तक पहुंचा, रानियों के बीच से गुजरा, सेनाओं के बीच से गुजरा, हाथी घोड़ों के बाजू से कब गुजर गया पता नहीं चला। जब लौट करके वापस आया तो चक्रवर्ती ने पूछा कि तुमने मेरा बाधा देखा, मेरे एक से बढ़कर एक सुंदर रानियां लेके जब लगाते हुए देश फूल के हीरे जवाहरात देखे, उतने ऊंचे ऊंचे हाथी घोड़ा देखे। उसने कहा कि नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा, क्यों नहीं देखा, मेरे लिए तो ये भय था कि अगर एक दिन तेल की गिर जाएगी कटोरे में से तो मेरा शीश उतार लिया जाएगा, इसलिए मैं भयभीत रहा, मैं कुछ भी नहीं देख पाया, मुझे क्षमा करो। सम्राट ने कहा कि इसमें क्षमा की कोई बात नहीं है, जिस तरह तुम्हारी दृष्टि उस कटोरे पर थी, जगह पर नहीं थे, वासनाओं की ओर नहीं थी, और जितने भी जगह विलासता की सामग्रियाँ थी उनके बीच से भी गुजर करके तुम्हें ये मालूम नहीं चला कि कौन व्यक्ति कहाँ पर खड़ा है, कहाँ पर घोड़े खड़े हैं, कहाँ पर हाथी खड़े हैं, कहाँ पर कौन खड़ा हुआ है, इसका तुम्हारे लिए कोई ध्यान नहीं रहा। ठीक उसी तरह मैं उस संसार के बीच में रहता हुआ भी अपनी आत्मा की ओर दृष्टि रखता हूँ, क्योंकि मुझे प्रत्येक समय यह भय सताता है कि अगर मृत्यु आ गई तब फिर मैं अपनी आत्मा का उद्धार नहीं कर पाऊंगा। संसार से जाग संसार से भागने की कोशिश मिथ्या है, क्योंकि भागने से संसार तुम्हारे पीछे दौड़ते चला जाएगा। अगर सत्य तो सत्य सुख की उपलब्धि हमारे लिए करना है तो संसार के स्वरूप को करिए, चारों गतियों के बारे में चिंतन करो, ये सारे चिंतन मनन और अनुप्रेक्षाएँ हमारे लिए सत्य की ओर ले जाती है, और जीवन में सत्य सत्य है उसकी हमारे लिए दृष्टि देते हैं। आचार्य समंत भद्र स्वामी ने लिखा है कि समय के समय पर इन अनुप्रेक्षाओं का ध्यान अच्छी तरह से किया जाता है और सोचा जाता है कि असरण ऐसे हो रामित जो संसार है असरण है, यहाँ पर किसी तरह की शरण नहीं मिलने वाली है, यहाँ पर तो व्यक्ति अकेला आता है, अकेला जन्म लेता है, अकेला मृत्यु भी प्राप्त होता है, कुछ समय के लिए जैसे वृक्ष के ऊपर पक्षी बैठ जाते हैं शाम के समय अपने घोंसले में और सुबह होते तो अपने अपने दिशाओं में चले जाते हैं, उसी तरह ही परिवार के लोग संयोग से कोई पत्नी हो जाते हैं, कोई पुत्र बन जाता है, कोई बहन और भाई का संबंध बना लेते हैं, लेकिन ये संबंध सब मिथ्या होते हैं क्योंकि स्वार्थ की बुनियाद पर खड़े रहते हैं, ढोते में लहर की तरह बह जाते हैं। कितना भी विचार कर लेता है, संबंध जोड़ना है, संसार सोचना है, जीवन भोगना है, इसलिए मन उपयोग में जो अपने उपयोग का सही उपयोग कर लेता है, वह व्यक्ति कभी भी संसार में रहता हुआ भी संसार के दुखों से छूटने की प्रतिष्ठित कोशिश करता रहता है। वही व्यक्ति कोशिश कर पाता है जिसके अंदर संसार के प्रति, शरीर के प्रति और भोगों के प्रति अरुचि पैदा हो गई है। जिसे संसार की वस्तु में कोई सार नहीं दिखाई पड़ रहा है, वह संसार से उबरने की कोशिश करता है। ऐसे उसमें सिर्फ कुछ ही नहीं है, सत्य अगर कुछ है, शिव अगर कुछ है, तो वह मोक्ष है। मोह का अभाव है मोक्ष है, और मोह का सद्भाव है संसार है। जो मोह के साथ जीता है वह निरंतर संसार को निर्मित करके चला जाता है, और जो संसार में रह कर के भी मोह को क्षय करने में जुटा रहता है, अनासक्त भाव से जीता है, वह व्यक्ति एक क्षण अपने मोक्ष सुख को भी उपलब्ध कर लेता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक धर्मात्मा का, प्रत्येक भव्यात्मा का ये दायित्व है, कर्तव्य है कि वह अगर इस जगत में आया है तो उसके लिए एक असज असरण और अनित समय संसार से विरक्त होकर के अपने जीवन में मुक्ति के लिए कोई पुरुषार्थ करना चाहिए। मृत्यु हमारे जीवन को आकर के ढके, उससे पहले ही हमें कोई आत्म कल्याण का सूत्र पा लेना होगा, तब कहीं जाकर के हमारी आत्मा परमात्मा बन सकती है। किसी भावना के साथ अपने
से अपन लगातार अनुपेक्षा के बारे में जान रहे हैं। अनुपेक्षा और भावना दोनों एकार्थवाची शब्द हैं। अनुपेक्षा का अर्थ अपन ने लगाया था कंपैशन विद विजुअलाइजेशन या अंडरस्टैंडिंग कम विजुअलाइजेशन, एक ऐसी समझ जिसके साथ दृष्टि भी है, जिसमें हम हूबहू देख भी रहे हैं और उसको फील भी कर रहे हैं, उसको जान भी रहे हैं, जिसमें ऐसी क्रिया चलती रहती है वो अनुपेक्षा कहलाती है। और ये भी अपन ने जाना था कि अनुपेक्षा किसी भी चीज के बारे में बहुत बारीकी से विथ फाइननेस पूरी उसकी बारीकी से अध्ययन करने की प्रक्रिया है। इससे शॉर्पनेस बढ़ती है। जो अनुपेक्षा रखता है वो हर चीज के बारे में बहुत राय रखती जानता है। तो पहली चीज थी कि हम उस किसी भी चीज को देखने की योग्यता पाते हैं बहुत शॉर्पली बहुत फाइननेस में और विद डेप्थ और बहुत गहराई से जानते हैं। अनुपेक्षा करने वाला चीजों को बहुत बारीकी से जानता है और चीजों को बहुत गहराई में जानता है और विद रियलिटी उसको चीजों को उसकी वास्तविकता में जानता है। इतना ही विद होलनेस चीजों को उसकी समग्रता में जानता है। किसी भी चीज के एक पहलू को देख लेना बहुत आसान है, ये पेन है और ये पेन टूट करके गिर जाएगा, ये इसका एक पहलू है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ है जो कि बचा रहेगा। ये शरीर टूट करके एकदम गिर जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी है कि कुछ बचा रहेगा। मुझे जो टूट करके गिर जाता है उसकी चिंता करनी है या कि जो इसके टूट कर गिरने के बाद भी बचा रहता है उसकी चिंता करनी है, ये जो अनुपेक्षा करता है वो जानता है। इसलिए कहते हैं कि विद रियलिटी वो उसकी वास्तविकता को जानता है और होलनेस में टोटलिटी में जानता है और विद अवेयरनेस बहुत सजगता पूर्वक वो चीजों को जानने की विद्या सीख लेता है। सजगता पूर्वक मतलब राग द्वेष से रहित होकर, हम लोग जो भी चीजों को जानते हैं वो राग द्वेष से युक्त होकर के जानते हैं और हमारी जैसी धारणा रंग बना लेते हैं वैसी चीजें दिखना शुरू हो जाती है। एक बार ऐसा हुआ कि एक बिल्ली अपने सेठ के साथ में पहन गई विदेश यात्रा पर गई बिल्ली, तो बहुत समझदार बिल्ली थी वो। जब वो सेठ जी वहां गए तो विक्टोरिया कोई रानी वानी थी, उनसे मिले और कई जगह घूमे। जब बिल्ली वापस लौटी तो बहुत सारी बिल्लियों ने घेर लिया उसको कि तुम तो पहन गई थी, क्या देखा वहां पर रानी वानी देखी होगी, उसके हीरे वगैरह कहना छोड़ो, वो सब तो था लेकिन चूहे बहुत मोटे मोटे थे वहां पर। बिल्ली को क्या देखेगा, बिल्ली को मैं रानी देखी थी ना, बिल्ली को रानी के लगत में लगे हीरे वगैरह, बिल्ली को तो अल्टीमेटली ये देखेगा कि चूहे बहुत मोटे मोटे थे। एक कबाड़ी कहीं से भी गुजरे अच्छी चीजें कम दिखाई पड़ेंगी उसको, ये टूटा ये बना है ये रखा इसको उठा करके अगर दुकान में रख लिया गया तो चार पैसे आ जाएंगे, कबाड़ी को नहीं देखेगा। और अगर एक कभी हो तो उसे हर जगह प्रकृति में सौंदर्य दिखाई पड़ेगा। और एक अगर ज्ञानी हो, एक अनुपेक्षा करने वाला हो, वो क्या देखेगा, चीज जैसी है वैसी की वैसी देखेगा। तो ये जो अवेयरनेस ये जो जागृति है वो अनुपेक्षा के द्वारा आती है। और अनुपेक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, इन सब चीजों के बाद जब इतनी सारी चीजें हुई, जब हमने चीजों को उसकी बारीकी से देखा, उसको चीजों को हमने डेप्थ में जाके देखा, चीजों को वास्तविकता में देखा, चीजों को सजगता के साथ देखा, चीजों को समग्रता के साथ देखा, इससे क्या हुआ, इससे हमारा मोह टूटता है। तो आकर के हम फिर आ जाए वहीं वापिस, वैराग्य रिपावन माही, जिसका जितना मोह टूटता है वो उतना ही व्यर्थ होता चला जाता है। ये अनुपेक्षाएं माता की तरह हैं, वैराग्य उपावन माई। माता जैसे पुत्र को उत्पन्न करती है ऐसे ही ये अनुपेक्षाएं माता है, वैराग्य की माता है, वैराग्य को उत्पन्न करने वाली। इसलिए जो है इनका हमें चिंतन करना चाहिए। जैसे जैसे हम चीजों को उनकी वास्तविकता में जानते जाते हैं वैसे वैसे हमारी दृष्टि की निर्मलता होती है, मोह घटता जाता है, संसार से हम व्यर्थ होते जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज कि जो व्यक्ति जितना कम मोह रखता है वो व्यक्ति उतना कम सुख दुख का एहसास करता है। सुख और दुख ये दोनों ही जो असाता वेदनी और साता वेदनी के उदय में होते हैं, पर बिना मोह के संभव नहीं होते हैं। इसलिए जिसका जितना मोह होता है, जिसका जितना शरीर के प्रति लगाव होगा, उसको ध्यान रखा, और जिसके सब सगे हो उसकी बात बिल्कुल अलग है। आज ये बात अपन सीखेंगे, किसी का एक और दो सगे होते हैं तो पीड़ा हो सकती, किसी के सब सगे हो जाए तो फिर एक अलग स्थिति बनती है। एक होता नॉर्मल, एक होता एबनॉर्मल, एक होता जीनियस। जीनियस और एबनॉर्मल में ज्यादा फर्क नहीं होता, वही स्थिति यहां पर भी है कि जब हम उस मैत्री को इतना अधिक विस्तार देते हैं कि वो पूरे संसार में फैल जाती है, तब फिर वो मैत्री शत्रुता से रहित हो जाती है। जब हम किसी को एक से मित्र बनाते हैं तो ध्यान रखें दूसरे को हम शत्रु बना लेते हैं, लेकिन जब हम किसी को मित्र शत्रु न बनाकर के सबके प्रति मैत्री भाव सामान्य रूप से रखते हैं तब फिर राग द्वेष से रहित स्थिति होती है। अनुपेक्षा हमें सुख दुख के बीच समता सिखा देती है, क्योंकि हमारा मोह कम हो गया है इसलिए हम सुख दुख दोनों को समान रूप से देखना शुरू कर देते हैं। इतनी बातें अपन ने पिछले दिनों से लगातार अनुपेक्षा के बारे में जान रहे हैं। हमने नित्य को पाने के लिए अनित्य का विचार किया है। अनुपेक्षा विचार करने की प्रक्रिया है, बहुत अधिक विचारवान होना, अविचार से विचारवान होना और विचारवान होकर के निर्विचार होना हमारा ध्येय है। अनुपेक्षा ध्यान से पूर्व की प्रक्रिया है। जो लोग ध्यान करते हैं और अनुपेक्षा नहीं करते हैं वे कभी ध्यान में सफल नहीं होते। हमें पहले विचार करना होगा, जो चीज जैसी है उसका वैसा विचार करना, पहले ध्येय बनाएंगे चीज को, फिर बाद में वही ध्येय हमारा ध्येय हो जाता है, तब हम उसके साथ एक लेख हो जाते हैं, तो उसी को हम ध्यान कहते हैं। अनुपेक्षा में हम विचारों के साथ एक लेख होते हैं और फिर धीरे से हम विचारों से परे हो जाते हैं, निर्विचार की स्थिति आ जाती है। अनुपेक्षा इतनी काम की चीज है ये मान के चलिए। हम विचारों को ताकत देंगे, विचारों की ताकत जिसके पास में है, जिसके पास विचार नहीं है उसके पास आचरण भी नहीं है, ये ध्यान रखिए। बिना विचार के जो आचरण है वो आचरण नहीं माना गया, हो तो सकता है आचरण, इसलिए विचारों को बहुत महत्व दिया और बार बार विचार करना। अब देखें अपन कि हमने अनित्य का विचार क्यों किया, हमें नित्य को जानना इसलिए हमने अनित्य का विचार किया। हमारी अप्रोच जो है वो पॉजिटिव है, लेकिन हम जो उसका निषेधात्मक पक्ष है उसको हम जान रहे हैं। अहिंसा निषेधात्मक है, हिंसा पॉजिटिव है। वैसे अहिंसा हिंसा नहीं करना, अनित्य नित्य को पाने के लिए मैं अनित्य को जान लूं ताकि मुझे नित्य मालूम पड़ जाएगा। मैं यहां पर दुनिया भर में शरण खोजता हूं, मैं पहले अशरण को जान लूं ताकि शरण ठीक ठीक मालूम पड़ जाए। तो इसलिए हमने अशरण को जानने की चेष्टा की है कि ये जो संसार जिसको कि हम शरण माने बैठे हैं कहीं ऐसा नहीं, ऐसा तो नहीं कि यही अशरण भूत हो। अगर ये जान लिया कि ये तो अशरण है तो फिर वास्तव में शरण की खोज शुरू हो जाएगी। अगर कोई जान ले कि ये सारी चीजें अनित्य है तो मुक्त क्या है इसकी खोज शुरू हो जाएगी। अगर कोई जान ले कि संसार क्या है तो फिर वो मुक्ति की तरफ जाना शुरू कर देगा। हम लोग ठीक से संसार को भी नहीं जान पाते हैं, शायद इसलिए अटके हुए हैं। जो व्यक्ति संसार को, जो व्यक्ति पहली क्लास को ठीक ठीक पास कर ले वो फिर से पहली बैठेगा क्या, वो दूसरी बैठेगा। हम संसार को पास करें अगर संसार को ठीक ठीक समझ लें तो फिर हमारा आवागमन नष्ट हो जाएगा। इसलिए संसार को भी, कुछ लोगों ने कहा कि अनित्य को जानने की क्या आवश्यकता, अनित्य का बार बार विचार क्यों करें, अशरण का बार बार शरण का विचार करें ये तो ठीक लगता है, इसलिए नित्य भावना होना चाहिए थी, शरण भावना होना चाहिए थी, मोक्ष भावना होना चाहिए। आप तो ये संसार भावना कह रहे हैं, तो संसार की भावना है क्या, नहीं, संसार की वास्तविकता को बार बार विचार करना ताकि उससे बचने के लिए हम उत्सुक हो सके, मोक्ष को पा सके। और आज अपन विचार करेंगे एकत्व का, ताकि हम अपने निजत्व को पा सके। निजत्व को पाने के लिए एकत्व का विचार है एक, और इसके पहले कि हम विचार को समझें हम एक चीज जान लें कि विचारों की ताकत कितनी है। विचार तो अपन करेंगे, एकत्व का विचार करेंगे, पर विचार की ताकत कितनी है। जब हम थॉट्स को डेवलप कर लेते हैं तब आपको ध्यान हो कि पिछले दिनों अपन ने चर्चा करी थी कि एक व्यक्ति निरंतर किसी को अपने विचारों के द्वारा भ्रमित भी कर सकता है और निरंतर किसी को सही विचार दे करके उसे सही रास्ते पर लगा भी सकता है। बहुत सुकुमार मुनि महाराज जी के बारे में जिन्होंने सुना हो वे सब जानते हैं, वो कहानी पूरी की पूरी जानते हैं कि कितने सुकुमार थे। दाना भी चुभता था, सूरज की रोशनी चुभ जाती थी, और वही व्यक्ति सब कुछ कुछ भी तो चेंज नहीं हुआ, वही शरीर है, वही आत्मा है। और एक दिन जब चेतना जागी, एक दिन जब वो विचारवान हुए, जब उनके भीतर थॉट्स डेवलप हुए, विचार आया उनके भीतर, फिर वो निकल गए, तब ये भी नहीं देखा कि कांटे कितने चुभ रहे हैं पैरों में, रक्त कैसे निकल रहा है, कितनी पीड़ा हो रही, स्याही पूरी की पूरी भक्षण करते हुए भी वे आत्मस्थ हो गए थे। ये किसकी शक्ति है? ये विचार की ही शक्ति है। हमारे पास भी अगर हम थोड़ा सा मन बना लें, अभी मन बना लें, तो जाकर के सो जाइए, अभी सो सकते हैं। और अभी मन बना लें तो आप श्रद्धा भी कर रहे हैं, अभी मन बना लें तो आप बाहर जाकर के झगड़ा भी कर सकते हैं। आप पर निर्भर करता है, आपके विचारों पर निर्भर करता, विचारों को दिशा देना ये काम अनुपेक्षा का है। एक तो विचारदान बनाती है अनुपेक्षा, फिर विचारदान भी कुछ भी सोचने वाला काम नहीं करवाती है, वो ठीक ठीक सोचने का काम करवाती है। इसलिए हमें विचारवान बना करके एक सही विचारों को दिशा देकर कंस्ट्रक्टिव अप्रोच देना ये अनुपेक्षा का काम है। विचार हम गंदे भी कर सकते हैं, विचार हम साफ भी रख सकते हैं। गंदे विचारों को साफ विचारों से साफ किया जाता है। जैसे कि पानी अगर मिट्टी में जब गिर जाए तो वही पानी कीचड़ बन जाता है, और फिर वो कीचड़ बन जाए तो वही पानी उसको साफ भी कर देता। हमारे विचार ही हमें गंदा कर देते हैं, हम अपने ही विचारों से उस गंदगी को दूर भी कर सकते हैं। अनुपेक्षा यही काम करती है। जो हमारे विचार गंदे हो गए हैं, उन विचारों को एक दिशा देकर के और सफाई करना, उसे उज्जवल कर देना, उसे निर्मल कर देना, विचारों को निर्मल करने की बिल्कुल तत्त फल का काम करती है अनुपेक्षा। हमें हमारे विचारों को पवित्र करती है। एक मां ट्रेन में यात्रा करती थी, खिड़की के पास जाकर के बैठ गई, उसने जिद करके तो वो खिड़की पाई। वैसे बच्चों की जिद रहती है खिड़की के पास बैठने की, तो वो खिड़की के पास बैठ गई। अब सारे मुसाफिरों ने, ठीक है अब अम्मा है, थोड़ी बूढ़ी अम्मा है, कह रही है तो मान जाओ, बच्चों की और बूढ़ों की बात तो मानी जाना चाहिए, तो बिठा दिया उसको खिड़की के पास। अब वो क्या करती थी, बार बार सब लोग देख रहे थे, वो अपने थैले में हाथ डालती, कुछ उसमें से निकालती और बाहर ऐसे फेंक देती। फिर थोड़ी दूर बाद जाती गाड़ी तो फिर निकालती फिर फेंक देती। बहुत देर हो गई, एक घंटे हो गया, लोगों ने कहा कि इसकी थैली में इतना सारा ये है क्या, और ये डालती क्या है, कुछ समझ में नहीं आता, बस चुपचाप निकालती डाल देती, फिर चुपचाप बैठ जाती फिर डाल देती। एक व्यक्ति ने कहा कि अम्मा क्या करती हो आप, इसमें क्या है? तो उसने कहा कुछ नहीं, इसमें तो थोड़े से रंग बिरंगे सुगंध वाले फूलों के बीज हैं। तो तू क्या कर रही हो? कुछ नहीं, रंग बिरंगे फूलों के बीजों को मैं फेंकती जाती हूं, इससे क्या होगा? अरे इससे क्या होगा, हमें जहां हम रहते हैं वहां खुशबू फैलाना चाहिए, वहां पर हमें सुगंध फैलाना चाहिए, और वहां पर उसको हरा भरा और बहुत अच्छा रखना चाहिए। जबकि मैं जहां से चली हूं जहां तक पहुंचूंगी, वो पूरी की पूरी जमीन में पार कर रही हूं, वो पूरी जमीन मेरी है। वही जिस जमीन पर से मैं चलूं वो जमीन मेरी, जब वो मेरी जमीन है तो मेरा फर्ज है कि उसे अच्छा बनाऊं। तो मैं ये कुछ बीज रख करके जाई थी अच्छे फूलों के, सुगंधित फूलों के, अगर उसमें से दो चार दस भी कहीं रास्ते में जम जाएंगे तो ये सुगंध फैलाएंगे और लोगों को आनंद देंगे। देखिएगा वो यात्रा कर रही है, लेकिन यात्रा के समय उसका विचार और उसका काम कितना अच्छा है। एक छोटा सा विचार और एक छोटा सा काम उसके पूरे जीवन को पवित्र कर रहा है। मैं जहां रहूं वहां पर पवित्रता फैलाऊं, वहां सुगंध फैलाऊं, क्या ये विचार हम नहीं कर सकते हैं? ये विचार हमें अनुपेक्षा देती है। विचारों में इतनी शक्ति है, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं। ऐसा विचारदान आज हम अगर अनुपेक्षा कर रहे हैं तो विचारदान बनने के लिए कर रहे हैं, और विचारदान भी ऐसे कि विचारों को सही दिशा दें। एकत्व के बारे में क्या होता, एक बना अकेला होना, या कि अकेला होना तो कई अर्थों में हो सकता है। हमारी कोई से नहीं बनी, इसे अपने अन्यारों कर लो, अपने अकेले हो गए, ये तो वो भी है। और दूसरा, कल तक चार बने होते, अब हम अकेले रह गए, ये भी एक अकेलापन है। और आई एम सफिशियंट, मैं अपने लिए पर्याप्त हूं, ये भी एक अकेलापन है। राग और द्वेष से रहित होकर के जो अकेलापन हो